समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में चलेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या हैं। लेकिन आज के समाचार क्या हैं? आज का दिन बड़ा खास है, पावन है, पवित्र है, क्योंकि आज है रामनवमी। कनक सिंहासन राजते कर धनुषायक हाथ, मंद मंद मुस्कान भरी नमो अवध के नाथ। आज अवध के राजा हम सबके प्यारे राम का जन्मोत्सव है और इसी की खुशी पूरे देश में है। अलग अलग जगहों पर उनका उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम का फ्लेवर है।
वेरी मच यस जागृति, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू जागृति, एंड विशिंग ऑल आवर लिसनर्स अ वेरी ब्लेस्ड रामनवमी टुडे। Being the day when Lord Ram appeared in his human and divine form is celebrated with great reverence and festivities all over India, but especially in the sacred city of Ayodhya in Uttar Pradesh. Ayodhya, considered to be the birthplace of Lord Ram, decks up like a bride in all her bridal finery. The city is bathed in the aroma of prayers and festivity. Ram Navami is not merely a festival, Jagriti, which celebrates the birth of Lord Ram. In fact, it is a celebration of all the facets of Lord Ram's life. It is also a reaffirmation of the faith and virtues depicted by Lord Ram, which are relevant to each and every human being even today. Though considered a god, Lord Ram is the human form of a divine force and is referred to as Maryada Purushottam, or the supreme among all men. The celebration of Ram Navami allows us to revisit and reset our emotional and spiritual fulcrum in order to evolve as better individuals who are forever on the path of benevolence and virtuosity. Isn't it? जागृति,
बिल्कुल। भगवान राम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, यानी कि पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी कि हर एक मर्यादा का उन्होंने पालन किया है। जैसा आपने कहा कि मनुष्य जीवन में रहकर भी किस तरह से हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, ये उन्होंने आदर्श स्थापित किए, राम राज्य की स्थापना की। और उन्होंने छोटी छोटी, जिसे कहते हैं ना कि छोटे व्यक्ति का क्या महत्व होता है, तो उन्होंने ये वानर सेना बनाकर बताया और रावण जैसा जो शक्तिशाली राजा था उस पर विजय प्राप्त की। तो उनके जीवन में हर प्रसंग में, उनके हर पल में इतना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए वो कहलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आज उन्हीं का जन्मोत्सव है। हम सब अपने घरों में और विशेषकर अवध यानी कि अयोध्या, जो दुल्हन सी सजी है, उनके जन्म पर और अलग अलग जगहों पर भी उनका उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ है, ये हम सब जानकारी लेंगे, बिल्कुल परिक्रमा करेंगे और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। और इस समय चल रहे हैं ट्राइबल गेम्स, तो उन पर भी आज डेडलाइन में हम बात करेंगे। और इसके अलावा खेल के मैदान की अन्य हलचलों की भी हम जानकारी देंगे, आर्थिक जगत पर भी रखेंगे नजर और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूँ जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार। सो स्टार्टिंग विद ऑल द न्यूज मेकिंग हेडलाइंस एट दिस आवर ऑफ द डे, Prime Minister Narendra Modi emerges as world's most popular leader, securing 68% approval in a latest global survey.
रेलवे अपनी संचार प्रणाली को उन्नत करेगा, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का कई क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना.
13 killed in a bus accident in Andhra Pradesh. President and Prime Minister express grief over the loss of lives.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने मानवीय और आर्थिक परिणामों का हवाला देते हुए पश्चिम एशिया संघर्ष को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया.
राम नवमी, मार्किंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम, बीइंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री.
और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक ने 5 स्वर्ण और 2 रजत जीतकर पदक तालिका में वर्चस्व स्थापित किया.
And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Khelo India Tribal Games. Jagriti, you know that feeling when hidden talent finally gets noticed? That moment back in school when a teacher spotted something special in you. Maybe it was the way you spoke in a class activity, the way you ran on the field, or even how you drew or sang. And suddenly, out of everyone, they paused, looked at you and said, "You have got something unique." That one moment changed everything, didn't it?
बिल्कुल अनुजा, इसने हमें आत्मविश्वास दिया, इसने हमें खुद पर थोड़ा और ज्यादा भरोसा करना सिखाया, हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया. और ठीक यही अभी पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भी हो रहा है.
Across the country, so many talented athletes from tribal communities have always had the skill, the strength and the passion, but not always the platform. Now, just like that encouraging teacher, the government is stepping in and saying, your talent deserves the spotlight.
बिल्कुल, छोटे-छोटे कस्बों से, गांवों से, छोटे-छोटे शहरों से जब प्रतिभाएं अपने लिए एक मंच तलाश करती हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में, तो ऐसे में खेलो इंडिया के जो ये अलग अलग संस्करण हैं वो मदद करते हैं और हमें मिलते हैं शानदार खिलाड़ी. और ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, ये पहचान का एक महत्वपूर्ण क्षण भी है. ये हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, क्योंकि कभी कभी बस किसी के आपको नोटिस करने की जरूरत होती है और सब कुछ बदलने लगता है.
Of course, it is a pioneering national initiative designed to discover, nurture and mainstream talent from India's tribal communities. Across the vibrant state of Chhattisgarh, the second day of competitions is in full swing. From the buzzing pools of Raipur to the passionate grounds hosting football and hockey, every corner feels alive with determination, pride and celebration.
जी अनुजा, क्या आपने कभी किसी दूर दराज के गांव से आए किसी युवा खिलाड़ी को राष्ट्रीय मंच पर कदम रखते देखा है?
Yes, I think so. But this is a very good platform which the government has started.
जब से खेलो इंडिया का ये आयोजन शुरू हुआ है, ऐसे बहुत सी कहानियां, ऐसे बहुत से किस्से हमारे सामने आ रहे हैं जो अपने साथ न सिर्फ अपने सपने बल्कि अपने पूरे समुदाय की उम्मीदें भी लेकर आते हैं. और ट्राइबल गेम्स का जो ये आयोजन है खेलो इंडिया का, यहाँ ठीक यही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, हम समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पर, जहां संसाधनों की इतनी कमी होती है, सरकार वहां पहुंच रही है, हर तरीके से विकास के अपने मार्गों को वहां खोल रही है, खेलों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यहां शुरू किया गया है.
Yes, and today swimming strokes are slicing through the water, weights are being lifted with raw strength, and on the football field every pass carries purpose. In fact, the men's football clash between Chhattisgarh and West Bengal ended in a gripping one each draw, a proof that the competition is as fierce as it is inspiring.
जी, और अभी कर्नाटक 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ सबसे आगे चल रहा है. उसके ठीक पीछे है उड़ीसा और उसके बाद है असम. त्रिपुरा और मेजबान छत्तीसगढ़ भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों से परे हर मेडल एक कहानी कहता है. सुबह सवेरे की मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प की ये कहानी होती है.
द गेम्स आर स्प्रेड अक्रॉस कल्चरली रिच रीजन्स लाइक जगदलपुर, बस्तर एंड सुरगुजा ऑफ छत्तीसगढ़. ईच लोकेशन ब्रिंग्स इट्स ओन रिदम, इट्स ओन ट्रेडिशंस, इट्स ओन स्टोरीज.
और अनुजा, आप और श्रोता भी ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया है, तो इसके पीछे की एक वजह है, यहाँ पर 32% से भी अधिक आबादी जो है वो जनजातीय समुदायों से ताल्लुक रखती है. ये धरती न केवल इन खेलों की मेजबानी कर रही है बल्कि इनमें बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रही है.
Of course, its forests, festivals and traditions are deeply connected to physical endurance, agility and skill. The games, running from the 25th of March to the 3rd of April, feature 7 competitive sports. Those are archery, athletics, football and hockey.
बिल्कुल, और तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती के साथ साथ इन खेलों में मल्लखंब और कबड्डी को भी प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है. और ये सभी याद दिलाते हैं कि भारत की जो अपनी स्वदेशी परंपराएं हैं वो किसी भी आधुनिक खेल विधा जितनी ही सशक्त हैं.
And the grand opening was led by Union Sports Minister Mansukh Mandaviya alongside the Chief Minister Vishnu Devsai. And the most exciting part is that these games aren't a one-time event. They are set to become an annual celebration right here in Chhattisgarh. Addressing the ceremony, the Union Minister said that the Khelo India Tribal Games will now be held annually in Chhattisgarh. He stated that tribal athletes from across the country will come to the state to showcase their talent.
जी केंद्रीय मंत्री ने इन खेलों को सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताया जिसका उद्देश्य जनजातीय खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण देना है और ये सुंदर पहल भारत सरकार के प्रमुख खेलो इंडिया मिशन के तहत चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया ने एक के बाद एक कई मंच तैयार किए हैं।
Yes, we have the Khelo India Youth Games for school-level athletes, the Khelo India University Games for young champions in colleges, and even the Khelo India Winter Games, showcasing talent in ice and snow sports.
और अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जुड़ने के साथ ये मिशन भारत के भीतरी इलाकों तक और भी गहराई से पहुंच रहा है।
सो दिस इजंट ओनली अबाउट वन इवेंट, इट्स पार्ट ऑफ अ मच बिगर विजन, अ विजन वेयर नो टैलेंट गोज अननोटिस्ड एंड एवरी ड्रीम गेट्स अ फेयर चांस टू ग्रो।
तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भारत के लिए असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी जनजातीय गांव का एक युवा तीरंदाज या पहलवान अगला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकता है।
ऑफ कोर्स, इट मींस हिडन टैलेंट इज फाइनली बीइंग सीन, सपोर्टेड एंड सेलिब्रेटेड।
बिल्कुल, इसका अर्थ है कि भारत न केवल संस्कृति में विविध है बल्कि क्षमता में भी शक्तिशाली है।
मोर देन 3,000 एथलीट्स फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। दैट्स थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स रनिंग, स्विमिंग, लिफ्टिंग एंड स्ट्राइविंग टुगेदर, इजंट इट जागृति?
बिल्कुल, और जब आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि हमारे देश के कोने कोने में ऐसी कितनी ही अद्भुत कहानियां हैं जो अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, और वह राष्ट्र कितना शक्तिशाली होगा जो उन सभी को एक ही मंच पर ले आए।
दिस इजंट ओनली अ स्पोर्टिंग इवेंट, इट्स इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स रूट्स, इट्स रेजिलियंस एंड इट्स राइजिंग स्टार्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स Not just exciting, but truly unforgettable.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Of course, and let's start with the ongoing film festival in Delhi. The ongoing International Film Festival Delhi 2026 at Bharat Mandapam is an important milestone in making the national capital a global film hub. The film festival aims to boost the creative economy, support film tourism, give fresh talent opportunities, and facilitate creators with a single window. We have more on this from our correspondent.
On the second day of film festival, Sakrantiki Vastunam, Lust for Life, Nirantar and Miyazagan films will be screened for the audiences. It will also feature Sitare Zameen Par, Noor, Bhagwant Kesari and Mahadev Ka Gorakhpur. In the Leaders Lounge, key industry session will include the inauguration of Cine Exchange, Pitch Forum, the Producers Chair, the Casting Eye and interaction with Money Heist series actor Enrique Arce and a session on history of Bhojpuri cinema. The film festival will host screening of over 125 Indian and international films, gala premieres and star-studded screening. Showcases digital and emerging cinema and will include master classes, industry panel discussions and workshops and cultural evenings and live performances. The week-long film festival will conclude on the 31st of this month. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
और दिल्ली से चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। मिलेट्स मिशन, सब्जी क्रय, रेशम उत्पादन और सामूहिक खेती जैसी गतिविधियां अब गांव में आर्थिक मजबूती का आधार बन रही हैं। सहकारिता के इन्हीं प्रयासों के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता से।
ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारिता अहम भूमिका निभा रही है। राज्य में मिलेट मिशन के माध्यम से करीब 53,000 क्विंटल मंडुए की खरीद की गई है, जिससे सहकारी समितियों को लगभग 53 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। वहीं मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत 181 केंद्रों के जरिए करीब 20,000 टन साइलेज का वितरण किया गया है, जिससे समितियों को लगभग 63 लाख रुपए की आय हुई है। टेहरी और उत्तरकाशी में सहकारी समितियों द्वारा किसानों से सीधे सब्जियों की खरीद की जा रही है। है। इस वर्ष अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की सब्जियां खरीदी जा चुकी हैं, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मिला है और समितियों को भी आय प्राप्त हुई है। आगामी 1 अप्रैल से इस व्यवस्था का विस्तार 22 समितियों तक किया जाएगा। बायो फर्टिलाइजर के क्रय विक्रय में भी सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिससे कई समितियों को लाखों रुपए की आय हुई है। इसके साथ ही माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के तहत चमोली और पौड़ी में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम उत्पाद के क्षेत्र में भी सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हजारों किट पालक और बुनकर इससे जुड़े हुए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और रेशम उत्पादों का उत्पादन व बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। इन सभी प्रयासों के जरिए सहकारिता न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
And now from Uttarakhand to the state of Goa. Goa is emerging as a model for balanced fertilizer use as the center steps up efforts to promote sustainable agriculture under the PM Pranam, that is Prime Minister's program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth scheme. Our correspondent has more on this.
The Government of India has reinforced the need for balanced and sustainable use of fertilizers, with Indian Council of Agriculture Research recommending soil test-based nutrient management tailored to local conditions. Data released by PIB shows that Goa's NPK consumption ratio has remained relatively balanced over the past 3 years, improving from 2:1.4:1 in 2022-23 to 1:7:0.9:1 in 2024-25. This is significantly better than the national average, which continues to be skewed towards nitrogen use. Experts say Goa's trend reflects lower dependence on urea and greater scope for integrated nutrient management, including organic inputs and biofertilizers. Under the PM Pranam scheme, states are incentivized to reduce chemical fertilizer consumption and adopt sustainable practices. The initiative promotes the 4R approach: right quantity, right time, right type, and right method of application. Center says such measures will help improve soil health and ensure long-term sustainability of agriculture in states like Goa. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
Aur Chandigarh ne apni sthapna ke 75 varsh 24 मार्च को पूरे किए हैं। और चंडीगढ़ का जब नाम आता है तो कितना खूबसूरत सा शहर हमारे जहन में आ जाता है उभर के।
एब्सोल्युटली जागृति, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी। Punjab Governor and Administrator of the Union Territory, Chandigarh, Shri Gulab Chandra Kataria, congratulated those who contributed to its creation and appreciated the role of the administration in maintaining the city's unique character through planned growth, cleanliness, green spaces and improved civic infrastructure. We have more on this from our Jalandhar correspondent.
The Union Territory of Chandigarh has completed 75 years of its creation. To mark the day, a special program named 75 Years of Chandigarh, honoring Indian modernist of Chandigarh, was organized, in which 12 Indian modernists were felicitated. These 11 Indian professionals were ICS officers Shri M.S. Randhawa, P.N. Thapar and A.L. Fletcher, architects Aditya Prakash, A.R. Prabha Walker, Jeet Malhotra, B.P. Mathur, J.K. Chaudhary, M.N. Sharma, U.E. Chaudhary and Chief Engineer of Capital Project P.L. Verma. Addressing the gathering, Punjab Governor Shri Kataria, while referring to the city's journey since its development began in 1951, said it is because of the extraordinary contributions of these pioneers that Chandigarh today stands as India's most modern and most livable city. He described Chandigarh as a symbol of modern India's vision and planned development. Chandigarh, which is known as the City Beautiful and was referred to as a city of green hedges and grey beards, has changed with the time. Marking 2026 as the 75th year of the beginning of Chandigarh's making, Shri Kataria called upon all citizens, institutions and organizations to join a 3-year long commemoration through 2026 to 2028. The event was organized by Chandigarh administration in association with the Chandigarh Citizens Foundation. For Parikrama, this is Rajesh Bali from आकाशवाणी न्यूज जलंधर।
और आज अनुजा राम नवमी की पूजा है और कल भी लोग दुर्गा नवमी की पूजा करेंगे। और हमारे देश की ये खूबसूरती है कि अलग अलग हिस्सों में एक ही त्यौहार को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। और इस समय बसंती पूजा जो है अगरतला में आयोजित की जा रही है। दुर्गा पूजा का ही एक रूप है, और अधिक बताइए हमारे श्रोताओं को इसके बारे में।
यस, बसंती पूजा, द वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा इन द स्प्रिंग सीजन, बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड विद द किंग सूरत इन द सत्ययुग। Preserving its heritage and glory, it has become an important part of Tripura's festive calendar. Since 1949, Basanti Puja has been organized at the historic Durga Bari Temple in Agartala under government management, following its own unique rituals and customs. We have a report on this.
According to scriptures, Basanti Puja, the springtime worship of goddess Durga, traces its origin to King Suratha's devotion to the ten-armed goddess, the destroyer of evil. Although the autumn Durga Puja, marked by the ritual of Akal Bodhan, is more widely celebrated today, Basanti Puja continues to return every year, sustaining its own distinct legacy. Here, goddess Durga is not worshipped in the conventional ten-armed form. Instead, the deity appears in a slightly different manifestation. This was explained by Jayanta Bhattacharya, a representative of the sixth generation of the royal priestly family.
ये दुर्गा वाली जो बासंती पूजा है वही काल का पूजा है, और शरद में जो होता है वो अकाल बोधन है। रामचंद्र ने अकाल बोधन किया था, लेकिन अभी बोधन नहीं होता, अभी तो माँ जागृत है, इसीलिए ये काल का ही पूजा है। उस सामने दो हाथ होगा, पीछे आठ हाथ होगा माँ के। महारानी सुलक्षणा देवी एक टाइम माँ की आरती के समय माँ की दस पूजा रूप देख के डर गया था, उसके बाद रात को माँ के सपना देश हुआ, ये तुम ऐसे रूप देख के जो डर गया, इसीलिए मेरे सामने से दो हाथ करो और पीछे आठ हाथ लुक का इधर रखो।
आप होल्डिंग अ ट्रेडिशन दैट डेट्स बैक नियरली 500 इयर्स, बासंती पूजा एट द दुर्गाबारी टेम्पल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन सिंस 1949 व्हेन त्रिपुरा मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन। फेस्टिवल एट दुर्गाबारी टेम्पल ऑल्सो सर्व एज एन ओकेजन फॉर द जॉय एंड वेल बीइंग ऑफ द कॉमन डिवोटीज।
हर साल मैं इधर आती हूँ, इधर जो बासंती पूजा होती है मैं इधर भाग लेने के लिए आई हूँ, घर परिवार की मंगली मेरी उद्देश्य है।
Held every year for the well-being and prosperity of the people of the state, the celebration continues with the same devotion and grandeur this year as well. For Parikrama, Shuman Bhattacharya, Akashvani Agartala.
और अब बात खेलों की। मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। पहले हाफ में विशाल यादव के गोल ने भारत को बढ़त दिलाई है, और ये इस चैंपियनशिप में भारत का पहला मैच है। आज की जीत पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी अगर भारत इसको जीतता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश से 0-2 से हार चुका है।
And if we talk about the business news of the day, Indian stock markets remained closed today on the occasion of Ram Navami. Trading was halted at both the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange across segments, including equities, equity derivatives, currency derivatives and securities lending and borrowing. Meanwhile, trading in the commodity segment was shut during the morning session as per the Multi-Commodity Exchange of India. However, trading will resume in the evening session at 5 p.m. And in the global crude oil market, Brent crude was trading 3.8% up at $106 and 9 cents per barrel, while WTI crude was trading over 3.3% higher at $93 and 35 cents per barrel in the intraday trade. For more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को, और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम श्रीलंका के जाने माने नेता फिलिप गुणवर्धना का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लिए फिलिप गुणवर्धना का प्रेम और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के उनके प्रयास 1920 के दशक के आरंभ में अमेरिका में शुरू हुए थे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में जयप्रकाश नारायण के सहपाठी थे, जहां वे औपनिवेशिक शासन से आजादी की वकालत किया करते थे।
1928 में फिलिप गुणवर्धना इंग्लैंड चले गए और वी के कृष्णा मेनन के साथ इंडियन लीग की गतिविधियों में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर लंका समाज पार्टी LSSP ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुलकर विरोध किया और उसके सदस्यों को भूमिगत होना पड़ा। फिलिप गुणवर्धना को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुला विरोध करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। 5 अप्रैल 1942 को कोलंबो पर जापानी हवाई हमले के दौरान गुणवर्धना सहित कई नेता जेल से निकलने में सफल रहे। गुरुसामी के छद्म नाम से फिलिप अपनी पत्नी कुसुम के साथ भारत आ गए।
भारत में गुणवर्धना दंपति उन भूमिगत कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 1943 में फिलिप और उनकी पत्नी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बंबई में आर्थर रोड जेल भेजा गया। एक वर्ष बाद दोनों को श्रीलंका निर्वासित कर दिया गया।
1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर ही उन्हें रिहा किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्रीलंका में उनके घर गए और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में समर्थन और उनके व्यक्तिगत बलिदान के लिए दोनों का धन्यवाद किया।
1948 में श्रीलंका के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद फिलिप और कुसुम श्रीलंकाई संसद के लिए निर्वाचित हुए। फिलिप 1956 में पीपल्स रिवॉल्यूशन सरकार के संस्थापक नेता और कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें श्रीलंका में समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। फिलिप गुणवर्धना अंत तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और 26 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया।
सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भारत हजारों वर्ष से श्रीलंका का घनिष्ठ पड़ोसी मित्र रहा है। फिलिप गुणवर्धना और श्रीलंका के अज्ञात शहीदों का बलिदान दोनों देशों के मजबूत संबंधों का आधार और प्रतीक है।
आज प्रसिद्ध मूर्तिकार कटिंगेरी कृष्णा हेब्बार की पुण्यतिथि है। के हेब्बार अधिकांशतः भारत विषयक कलाकृति ही बनाया करते थे। उन्होंने आरंभ में लगातार मालाबार और तुलुनाडु के सतत क्षेत्रों का चित्रण किया। उनकी कला पॉल गोगुइन और अमृता शेरगिल से प्रेरित थी। कला में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
And today we also remember and pay tribute to the legendary Anand Shankar on his death anniversary. He was an Indian sitar player, singer and composer whose music blended Western and Eastern musical styles. In the late 1960s, Shankar traveled to Los Angeles where he played with many contemporary musicians including Jimi Hendrix. There he was signed to Reprise Records and released his first album Anand Shankar in 1970 with original Indian classical material alongside sitar-based cover versions of popular hits like the Rolling Stones.
आनंद शंकर ने दूरदर्शन के चर्चित सीरियल ब्योमकेश बख्शी के लिए भी म्यूजिक दिया था। आज आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की जयंती है। हिंदी साहित्य को अपनी कलात्मक और भाव प्रवीण रचनाओं से समृद्ध करने वाली महान साहित्यकार महादेवी वर्मा की गिनती छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला।
And of course, she is regarded as one of the most influential female writers of the 20th century. Mahadevi Verma is also considered among the pioneers of feminism in India. Throughout her career, Verma's work in writing, editing and teaching significantly advanced the development of Prayag Mahila Vidyapeeth in Allahabad. And of course, her compilation of books like Shrinkhala Ki Kadiyan, Atit Ke Chalchitra, they are a collection of short stories based on her interactions with women who touched her life during her stint as the principal of a school for girls.
जी, और उनकी कविता की दो पंक्तियां मैं यहाँ सुनाती हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कणकण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।